अध्याय 8 प्राचीन भारत में नगर प्रशासन। भूमिका वैदिक नगर एवं शासन। वैदिक काल के नगरों और उनकी व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। वैदिक सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण थी और पुर या नगर का उसमें कोई अधिक महत्व नहीं था। परवर्ती संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों के काल में भी नगरों के बारे में बहुत ही कम उल्लेख है, पर ऐतिहासिक काल में आने पर सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब नगरों और पुरों से परिपूर्ण दिखाई देता है। इसमें से अधिकांश शासन में स्वायत्त थे और अपनी नगर परिषदों द्वारा अपना शासन प्रबंध करते थे। इन परिषदों के संगठन का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। संभवतः नगरों के वयोवृद्ध और प्रतिष्ठित नेताओं का एक प्रकार के सर्वसम्मति में उसमें अंतर्भाव हो जाता था। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार आधुनिक काल के बम्बई ऐसे महानगरों की शासन व्यवस्था और प्रांतों के छोटे छोटे नगरों की व्यवस्था में महान अंतर रहता है। यद्यपि बम्बई कारपोरेशन और किसी छोटे शहर के म्यूनिसिपल संगठन में कुछ समान सिद्धांत भी अवश्य हैं, फिर भी पहली संस्था का कार्य क्षेत्र दूसरी से कहीं अधिक विस्तृत है और उसके लिए अधिक उप समितियों को भी आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन भारत में ऐसी ही स्थिति थी। गुप्त काल से साधारणतः नगर और पुरों की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण उपलब्ध होने लगता है। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पुरपाल पुर शासन का प्रधान होता था। यदि पुर जिले का केंद्र हुआ तो यही जिले के शासन का भी कार्य करता था। यदि पुर दुर्ग हुआ तो इसमें कोटपाल नामक केंद्रीय सरकार का एक और अधिकारी रहता था, जिसके मातहत कई नायक रहते थे। प्रायः पुरपाल स्वयं ही सेना नायक होते थे, जैसे मंत्री और जिले के शासक हुआ करते थे। यथा कर्नाटक के सर्वटूर नामक कस्बे का पुरपाल रुद्रया राष्ट्रकूट सम्राट तृतीय के अंगरक्षकों में से था। कंकग देवमल्ल के शासन काल में बदामी के संयुक्त पुरपाल महादेव और पल्लदेव दोनों ही दंड नायक थे। कभी कभी ऐसे विद्वानों की श्रेणी में से जो सर दर्शन ऐसे कठिन विषयों में भी दिलचस्पी रखते थे, पुरपाल चुने जाते थे। संभव है कि वे उन दुर्लभ व्यक्तियों की कोटि में रहे हों जिनमें शास्त्र दोनों का संगम होता है। मौर्यकालीन नगर एवं शासन प्रबंध। मौर्य काल में नगरों का शासन। मगस्तनिज ने अपने तीसरी चौथी शताब्दी इससे पूर्व में पाटलिपुत्र नगर व्यवस्था का वर्णन किया है। इसके अनुसार साम्राज्य की राजधानी होने और देश विदेश के व्यक्तियों से परिपूर्ण रहने के कारण इसकी व्यवस्था साधारण से कुछ भिन्न थी, परंतु इसका सामान्य स्वरूप वही था जो साधारण व्यवस्था नगर समितियों का था। पाटलिपुत्र नगर समिति में 3 सदस्य थे और 6 उप समिति थी। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे जो निम्न प्रकार के थे। नंबर 1 प्रथम उप समिति। इस उप समिति के अंतर्गत विदेशियों की देखरेख और उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखना था। यह उप समिति विदेशियों के निवास, सुरक्षा, औषधि इत्यादि का प्रबंध करती थी। 4 द्वितीय उप समिति। इस समिति का यह कार्य था कि नगर में जन्म मरण का लेखा करना। इसके अंतर्गत कर, शिक्षा, न्याय आदि इस समिति का उपयोग होता था। नंबर 3 द्वितीय उप समिति। इस उप समिति का कार्य औद्योगिक तथा शिल्प संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना। इसके अंतर्गत मिश्रण करने और अनुचित लाभ उठाने के लिए उत्पादकों को नियमतः दंड मिलता था। शिल्पकारों का मौर्य शासन में बड़ा आदर किया जाता था। नंबर 4 चतुर्थ उप समिति। इस उप समिति का कार्य बिक्री के ऊपर कर और चुंगी वसूल करना था। जो कोई जानबूझ के कर से बचने का प्रयास करता था उसको कड़ा दंड मिलता था। नंबर 5 पांचवां उप समिति। इस समिति का अधिकार वाणिज्य के ऊपर या बाजार में बिकने वाले सामान माप और तौल के ऊपर इसका नियंत्रण था। नंबर 6 छठवीं उप समिति। इस उप समिति का कार्य नगर प्रशासन के क्रय तथा विक्रय के नियमों का निर्धारण करना था। इसके अलावा इसका कार्यभार माप के परिमाणों का निश्चय, इनका परीक्षण और व्यापारियों को खास वस्तुओं के बेचने का निर्देश देना था। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर शासन में सार्वजनिक भोजनालय, आरक्षा विभाग, जेल, मनोरंजन, स्वास्थ्य और सफाई, वास्तुकर्म, शिक्षा और जनता की नीति और आचरण भी सम्मिलित थे। मगर स्मृत के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि मौर्य काल का नगर शासन बहुत ही सुव्यवस्थित और सुख संपन्न था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर के शासन को नागरिक कहा जाता था। शासन की सुविधा से दृष्टिगत रखते हुए नगर को अनेक उपविभागों में विभक्त किया जाता था, जो निम्न प्रकार के थे। नंबर 1 नागरिक, नंबर 2 स्थानिक, नंबर 3 गोप। नंबर 1 नागरिक, इसको पूर्व मुख्य कोष्टक में नगर मुख्य भी कहा गया है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती थी। इसका स्थान नगर में उसी प्रकार समझा जाता था जैसा कि जनपद में समाहर्ता का होता है। नंबर 2 स्थानिक, राजधानी को 4 भागों में विभक्त करके उसकी व्यवस्था की जाती थी और इस प्रकार नगर में 4 स्थानिक होते थे। इनका मुख्य कार्य नगर के प्रति शांति एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना था। नंबर 3 गोप, स्थानिक की अध्यक्षता में कई एक गोप होते थे। इन गोपों का कार्य कुछ निश्चित कुटुम्बकों की देख रेख करना तथा जनसंख्या एवं पशु संख्या का हिसाब रखना होता था। नगर के अंतर्गत धर्मशालाओं की भी व्यवस्था रहती थी। इसके अतिरिक्त कतिपय नागरिकों का उल्लेख अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। नंबर 1 अतिथि, गृहस्थों को अपने यहाँ आने वाले और जाने वाले अतिथियों की सूचना नित्य प्रति गोप के पास भेजनी पड़ती थी। यदि किसी भी स्थिति में कोई अवांछनीय घटना घटित हो जाती तो उसके लिए गृहपति को ही उसका उत्तरदायी ठहराया जाता था। नंबर 2 चिकित्सक, यदि चिकित्सक किसी व्यक्ति की चिकित्सा गुप्त रूप में करता था तो उसकी सूचना गोप को देनी होती थी। इस श्रेणी में कुछ गोपनीय मर्जों के शिकार व्यक्ति ही आते हैं और उनका इलाज उसी स्थिति में किया जाता था जबकि नगर अधिकारी उसके लिए आज्ञा प्रदान करे। नंबर 3 रात्रि के समय नगर में आवागमन, उस समय रात्रि के मध्य नगर की चोरों डाकुओं लुटेरे से रक्षा के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए थे। इनका जो उल्लंघन करता उसको कठोर दंड मिलता था। नंबर 4 दुष्चरित व्यक्ति तथा गुप्तचर, नगर के अंदर तथा बाहर अनेक देवालयों में और अन्य स्थानों में गुप्तचर अनेक वेश में घुमा करते थे। प्रत्येक प्रकार के आहत, नशे वाले, अधिक भोज ढोने वाले और अधिक थके हुए व्यक्ति की सूचना ये नागरिक के पास भेजते थे। नंबर 5 अग्नि रक्षा, उस समय अधिकांशतः भवन निर्माण में लकड़ी का उपयोग किया जाता था। आग लगने की अत्यंत संभावना होने के कारण कौटिल्य ने उसके लिए अनेक सावधानियों का उल्लेख किया है। प्रत्येक गृहस्थ घर के कुछ निश्चित भागों के अंदर ही आग जला सकता है। सुनार, लुहार आदि जातियां जो कि अग्नि के द्वारा ही अपने जीविका का अर्जन करती थी, उनको नगर में एक छोर पर बसाया जाता था। घर में तथा नगर में यत्र तथा तत्र आग बुझाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की पहले से ही व्यवस्था रहती थी। यदि कोई व्यक्ति असावधानी करता तो उस पर जुर्माना होता था। जानबूझकर आग लगाने वाले व्यक्ति को उसी आग में जीवित रूप से ही झोंक दिया जाता था। इस प्रकार से उस दिशा में काफी सावधानी बरती जाती थी। निष्कर्ष इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्य शासन में नगर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जो व्यक्ति नगर को किसी प्रकार दूषित व मलिन करता हुआ पाया जाता था उस पर जुर्माना होता था। पवित्र स्थानों की सफाई की पूर्ण व्यवस्था थी। मृत शरीर, पशु एवं व्यक्ति को निश्चित स्थान पर से ही नगर के बाहर ले जाया जाता था। नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति दंडित किए जाते थे, अर्थात नगर शासन बहुत ही संपन्न था। किसी प्रकार की कमी मौर्य काल में नहीं थी। गुप्तकालीन नगर शासन, नगर शासन, नगर का शासन राज्य की ओर से नियुक्त पदाधिकारियों तथा स्थानीय सभा समितियों एवं समुदायों द्वारा संपन्न होता था। पदाधिकारियों में नगर प्रमुख उल्लेखनीय है। इसकी नियुक्ति की परंपरा हमारे देश में मौर्य काल से ही चली आ रही थी। नगर प्रमुख को कौटिल्य ने नागरक कहा है। उसकी पहचान अशोक कालीन कलिंग लेख के नगलक से की जा सकती है। मनुस्मृति में नगर के प्रमुख अधिकारी को नगर सर्वार्थ चिंतक अर्थात पुर में होने वाली प्रत्येक घटना की देख रेख करने वाले को कहा गया है। जूनागढ़ के अभिलेख में चक्र पारित का नामोल्लेख हुआ है, जो सौराष्ट्रपुर गिरिनगर का स्कंद गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी था। इस लेख के अनुसार उसके 2 प्रधान कर्तव्य थे, नंबर 1 नगर की रक्षा, नंबर 2 दुष्टों का दमन। इस पदाधिकारी से आशा की जाती थी कि उसका व्यवहार पूर्ववासियों के साथ सहानुभूति एवं आत्मीयता से परिपूर्ण हो। गिरिनगर का प्रधान अधिकारी चक्रपालित यहाँ के नागरिकों को पुत्र के समान मानता था तथा उनके दोषों को दूर करने की चेष्टा करता था। इस अधिकारी से सार्वजनिक कार्यों की भी आशा की जाती थी। उदाहरणार्थ चक्रपालित ने नागरिकों के लाभ के लिए सुदर्शन तटाक का जीर्णोद्धार किया था। इस पद पर प्रायः बहुत सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। जूनागढ़ के लेख के अनुसार चक्रपालित सब प्रकार से श्रेष्ठ तथा उसमें संपूर्ण वांछनीय गुण विद्यमान थे। वह क्षमा, प्रभुत्व, विनय, न्याय, सौर्य, दाक्ष्य, दान तथा दाक्षिण आदि सद्गुणों का केंद्र बिंदु था। नगर पालिका के कर्तव्य। गुप्त काल में नगर शासन के लिए एक सभा होती थी, जिसे प्राचीन ग्रंथों में पौर कहा गया है। रामायण, खारवेल के लेख तथा दिव्यावदान एवं कतिपय अन्य ग्रंथों में पौर शब्द का उल्लेख मिलता है। इनमें जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे पूर्व सभा का बोध होता है। बृहस्पति के अनुसार यह नगर में शांतिक कर्म अर्थात शांति की व्यवस्था करती थी। इसके अतिरिक्त पौष्टिक कर्म अर्थात नागरिकों के हित में कार्य करना भी इसका कर्तव्य समझा जाता था। नगर सभा के अन्य सार्वजनिक कार्यों में सभागृह, सरोवर, मंदिर एवं विश्रामशाला का निर्माण तथा अनाथ एवं दरिद्रों की सहायता करना प्रमुख लक्ष्य था। नगर सभा की वैदिक उसके एक कार्यालय में होती थी। प्रयाग के सन्निकट भीटा नामक स्थान में इस प्रकार के कार्यालय के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। नालंदा से एक मुद्रा मिली है जिस पर पूरिका शब्द लिखा मिलता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर सभा की एक मुद्रा भी होती थी, जिससे हम इस सभा के विशिष्ट लेख मुद्रित किए जाते थे।